राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे। पुकारो राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका श्री छठीकरा क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग अभी छठीकरा में बैठे हुए हैं। छठीकरा यानि षष्टीकरा, ऐसा उसका संस्कृत नाम है, लोकल नाम है छठी। छठी यानी वही षष्टी। आप लोगों को पता है ना, सब प्रसिद्ध छठी छठ पूजन में मुंबई में क्या क्या होता है, कितने वाद विवाद होते हैं छठी छठी के ऊपर, बिहारी और मराठी के बीच में। हाँ, तो वो छठ पूजा है क्या जिसके ऊपर लड़ रहे हैं? किसी को पता नहीं एक्चुअली, वो पर लड़ रहे हैं खाली, बस लड़ने के लिए बहाना चाहिए। तो छठी जो है उसका मतलब है षष्ठी, षष्ठी तिथि, जो यूपी में बिहार में उत्तर उत्तर भारत में जन्म होने पर ना षष्ठी पूजन होता है। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था ना एक चक्र में, तो वहाँ पर भी जन्म के बाद छठी पूजन किया गया था, और नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पर षष्ठी देवी का मंदिर भी है बहुत सुंदर। उनका गर्भ गर्भ के असुचि का ग्रह, उसके बाजू में षष्ठी देवी का सुंदर सफ़ेद रंग का सुंदर मंदिर है, वहीं पर पेड़ के नीचे उनका षष्ठी पूजन हुआ था। ये हमारी एक बहुत सुंदर प्रथा है भारत में, लेकिन अभी सब हम लोग अपनी प्रथाओं भूल गए हैं। वी आर सो बिजी इन आवर प्रोफेशन इन एक्टिविटीज़, और संस्कृति को सब भूल गए हम लोगों भी, क्या हमारा जो ऐश्वर्य है ना संस्कृति का, वो सब भूल गए अभी हम लोग। हमारा भारतवर्ष जो है ना वो टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए फेमस नहीं है। भारतवर्ष जो फेमस है वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और उन्नति के लिए और मार्गदर्शन के लिए फेमस है। सब लोग भारतवर्ष की ओर कब देखते हैं? जब उनको फ्रस्ट्रेशन आता है जीवन में, सब कुछ प्राप्त होने पर भी जब वैफलता आती है तो भारतवर्ष की ओर देखते हैं, और भारतवर्ष की ओर देखने से उसका समाधान जरूर होता है। तो संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान और ऐश्वर्य, ये हमारा सौंदर्य है भारत का, और हम उसी को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे एंटीना जो है ना वो पश्चिम में लगे हुए हैं, सारे एंटीना हमारे उधर की ओर मुँह करके खड़े हैं, और वहाँ कर जो भी वहाँ की जो भी तथाकथित दिव्य लहरें आती हैं उसको ग्रहण करके हम अपने आप को धन्य मान देते हैं। ये हमारी बौद्धिक गुलामगिरी है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल स्लेवरी है, जो हम लोग उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को धन्य मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए कपड़े पहनने में खुद को धन्य मानते हैं, उनकी वैसा सोचने में धन्य मानते हैं और उनके द्वारा जो भी कहेगा उसी को प्रमाण मानने में धन्य मानते हैं। कपड़े अभी पहनेंगे बोलेंगे मेड इन जर्मनी तो बहुत गर्व करते हैं, मेड इन दिल्ली होगा बोले मजा नहीं आता है कुछ से। तो मैंने वो एक प्रवचन दिया था, तो आप लोग सब नए आए हो शायद, नहीं आप तो थे शायद सब लोग, जस्ट बी यू है ना, बताया था ना आपको मैंने, पहले खुद कौन है पहचानो, फिर खुद कौन है इसके ऊपर गर्व करो और शान से खुद कौन है उस स्तर पर जियो। जस्ट बी यू वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग जस्ट बी यू छोड़कर व्हाट वी आर नॉट उसके ऊपर ही गर्व करते हैं हम लोग, इसलिए हम कहते हैं ना गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो आप लोग ये प्रभु जी आपका तो सिद्धांत ऐसा है कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, शरीर का धर्म जो है वो अशाश्वत है, तो देश का जो धर्म देशवासी का जो धर्म होता है वो भी अशाश्वत है, कल अगले जन्म में अगर अमेरिका में जन्म लेंगे तो अमेरिकन हो जाएंगे। तो आप ऐसे देह बोली देहात्मावाद पर क्यों बात करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता यही हमारी धार्मिकता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही धर्म है, धर्म का प्रतीक है। अगर अमेरिकन में बनूंगा तो मेरे अमेरिकन राष्ट्रीयता धर्म की प्रतीक नहीं हो सकती है वो, लेकिन भारत की भारतीयता, भारत में जन्म लेना और भारत में जन्म लेकर भारतीय होना, यही एक राष्ट्रीयता ऐसी है जो धार्मिकता से मिलती जुलती रहती है। आवर नेशनैलिटी एंड आवर डिवोशनल लाइफ इज वन, फॉर्चुनेटली वन। इसलिए हमारे बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते ना तो वो भारतीय होने का गर्व लेकर बाहर निकलना चाहिए। हमारे सारे बच्चे जो बाहर निकलते स्कूल में से ना, वो अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, उधर जाके पीजी करना है, उधर जाके एमबीए करना है, उधर जाके फाइनेंस में डिग्री करना है, उधर से कुछ करना है, एफआरसीआर करना है, ये हमारा बुरा नहीं उसमें करने में कुछ, लेकिन गोल नहीं होना चाहिए वो लाइफ का कि हमको वो करना है, वहाँ पहुँचना है एक बार बस। हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते समय देश के लिए अभिमान लेकर निकलना चाहिए कि हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत में रहेंगे, भारत की रोटी खाएंगे, भले आदि हो लेकिन भारत की ऑर्गेनिक रोटी खाएंगे, वो टॉर्टिलोज नहीं खाएंगे अमेरिका जाके जो ओरिजिनल नहीं होते हैं, है ना। तो मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, शाम तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपका समय नहीं लूँगा उतना, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी यात्रा केवल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है ऐसा नहीं है। साथ में कृष्ण जहाँ आए और जहाँ रहे वहाँ की संस्कृति का जागृति करने के लिए भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि भारत भूमि तो होइलो मनुष्य जन्म जार, जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है वो बहुत पुण्यवान जीव है, वो अनंत जन्मों के पुण्य से इस भूमि पर जन्म मिला है उसको, जिस भूमि में हर संत के हर भगवान के अवतार के चरण चिन्ह लगे हुए हैं, चरण कमल लगे हुए हैं, और उसकी एक संस्कृति है रहने खाने की, बोलने की, पहनने की और विचार करने की एक संस्कृति है, उस संस्कृति को पकड़ना है हमको। हमको सब कुछ छोड़ के विदेश संस्कृति को पकड़ रहे हैं हम लोग, वो भी गर्व के साथ, अपने आप को बेचकर, अपने सारे वस्त्र छीनकर उन्होंने हमको उनके कपड़े पहना दिए और हम गर्व से उसको पहनते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारी पैंट अमेरिकन है, लेकिन ये लांछन है हमारे, बौद्धिक लांछन है हमारे ऊपर, इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं उसका, आई डोंट नो हाउ टू से इट, इंटेलेक्चुअल डिग्रेडेशन है ये, जिसको खुद पर गर्व नहीं है, खुद के संस्कृति पर गर्व नहीं है और विदेश संस्कृति जो तुम्हारी नहीं है उस पर गर्व करते हैं, मतलब वो यहाँ का भी नहीं है उधर का भी नहीं है। तो इसलिए विदेश जाना, विदेश में जाके पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, पाप भी नहीं है, लेकिन हमारे रूट्स जो है ना, मूल वो यहाँ होने चाहिए, दिल से, बुद्धि से, मन से, तन से, मूल यहीं है और यहीं मन के विचार भी यहीं पर होने चाहिए रूटेड, तब जाकर ये स्थानों का महत्व, ये स्थानों की महिमा आपको पूरी तरह समझ में आएगी। जब हमारी रूट, जो हमारी मूल जो है ना, इस भूमि में गड़ गए होंगे ना, तो सारे रहस्य आपके लिए खुल जाएंगे। वे चैतन्य महाप्रभु भी पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया गए थे और लोगों ने श्राद्ध करना ही छोड़ दिया। अभी कौन से लोग हैं अमेरिका में इंडियन रहते हैं वो श्राद्ध करते हैं बताओ, बहुत रेयर और रेयर पीपल हु कम टू इंडिया टू डू श्राद्ध। फिर भगवान जब खुद श्राद्ध कर रहे हैं मनुष्य का जन्म लेकर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ये, आप हरि हरि का नाम लोगे तो वो सब कुछ आप माफ नहीं होता है आपके लिए, सारे कर्तव्य वहाँ निभाने पड़ते हैं। पति का कर्तव्य है, पत्नी का है, पुत्र का कर्तव्य और रिश्तेदारों का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, सब भूमि का ऋण है, संतों का ऋण है, सबका ऋण चुकाना पड़ता है, कोई ऐसे फ्री नहीं है। जब प्योर डिवोटी बन जाएंगे ना, संत खुद बन जाएंगे, तो भागवत में लिखा है कि संत के लिए सब ऋण मुक्त है, वो ऋण से कोई बंधा नहीं है। लेकिन जब तक हम शुद्ध भक्त अभी तक नहीं बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, तब तक सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। कोई कर्तव्य से हम भक्ति का नाम लेकर भाग नहीं सकते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र ले लिया तो हम शुद्ध भक्त हो गए। तुरंत भागवत का श्लोक बताते हैं कि देवर्षि तृप्त नृणाम, राजा का ऋण, देवता का ऋण, संत का ऋण सबसे मुक्त है, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम तो शुरू किया लेने के लिए, अभी सिद्ध कहाँ हुआ है, टाइम है उसके लिए अभी, तब तक तो सारे कर्तव्य निभाने हैं। संत लोग तो सोने पर भी नियंत्रण है उनका, हमारा है क्या? कथा में भी जगह रहना मुश्किल है, इधर कथा हो रही है फिर भी आंखें कह रही है प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं आप, सोने का समय है। संत लोग सोने के समय पर भी जप करते हैं और हम जप के समय सो जाते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट है पूरा। तो कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि हम सभी संस्कृति के ऋणों से मुक्त हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अगर भारतीय हैं तो भारतीय दिल से बनो, गर्व से बनो, आत्मविश्वास के साथ बनो, वैसे ही वस्त्र पहनो, वैसे ही विचारधारा रखो, और यही इस देश की माटी की सेवा करेंगे ऐसा विचार करो। ऐसा नहीं करें सोचो कि अभी ये सब होने के बाद, यात्रा करने के बाद एक बार एमडी हो गया ना, फिर हम जाएंगे अमेरिका में, पूरा वहाँ पर अपना बस्तान बसाएंगे, ऐसा मत सोचना। हम लोगों का जो बुद्धि है, हम लोगों की वाणी जो है, जितनी श्रेष्ठ है उतनी विदेश में किसी की नहीं है, और इतना हमारा रिच कल्चर है वो विश्व में कहीं नहीं है, कोई है ही नहीं, कल्चर ही नहीं है वो। हमारे नाम नहीं लेता मैं, हमारे पास एक विश्व के बड़े मशहूर व्यक्ति आए थे, बहुत मशहूर, एक ज़माने के हमारे बचपन के टेनिस प्लेयर थे, फाइनल में आए थे विंबलडन में, वो उनका वर्ल्ड में सब जगह 27 ब्रांचेस है टेनिस के ट्रेनिंग के, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोचेस के, और वो प्रभुपाद जी के फॉलोअर भी हैं। तो भक्ति विधान में आए थे वो, तो उनको आयुर्वेद डॉक्टर ने बहुत सारा चेकअप किया, बताया कि आपके शरीर में बहुत वात हो गया है। तो बोले क्या करना होगा, तो कहना उन्होंने कहा कि आपको रोटी खाना होगा। तो आप क्या खाते हो, तो मॉर्निंग में सैंडविच खाता हूँ, दोपहर में सैंडविच खाता हूँ, शाम को सैंडविच खाता हूँ, खाली बीच में चीज़ें अलग अलग होती है, कभी एवोकाडो होता है, कभी बनाना होता है, कभी टमाटो होता है, लेकिन दोनों तरफ से ब्रेड ही खाता हूँ, वो सारे ब्रेड पुराने होते हैं, फ्रिज में रखे होते हैं, फ्रोजन सैंडविच रेडी, वो निकालना है और ओवन में डालना है और वो प्लेट में डाल के खाना है। रिच से रिच आदमी जो होता है ना, अमेरिका का मिलियनियर, वो भी सब रेफ्रिजरेटेड खाना ही खाता है, और हमारे भारत का गरीब से गरीब आदमी बीवी के हाथ का गरम गरम रोटी खाता है। इमेजिन, सच्चा भाग्यवान और धन्यवान कौन है बताओ। कितना भी गरीब होगा ना आदमी, भिखारी भी होगा ना, रास्ते पर रहता है वो, झोपड़ी में कपड़े का शेड लगाकर रहता है, वो भी कोयला और लकड़ी डालकर वो तवा पर गरम रोटी बीवी खिलाती है उसको। तो वो अमेरिकन लोग, उनको बहुत समझाया हमने कि आपको वो फर्मेंटेड और पुराना ब्रेड नहीं खाना चाहिए, आपका शरीर का और वात बढ़ेगा और आप और मोटे हो जाएंगे और खोखले हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी रोटी कहाँ से खाऊं मैं, तो हमने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे बताओ अपनी पत्नी को, बोले मेरी पत्नी नहीं बना सकती है। तो कहते हैं एक मिलता है टॉर्टिलोज, वो रोटी का एक सौतेला भाई है। क्योंकि मैं जाके सब देख चुका हूँ, जाकर सब मॉल में जाकर अमेरिका में सब देखा है क्या क्या चीज़ है। वो भी पुराना होता है, वो भी रेफ्रिजरेटर होता है, उसको भी उठा के फ्रिज में से उठा के घर में आके गर्म करके खाते हैं। तो बोले ठीक है, इस बेस्ट बेट ऑफ बैड बार्गेन, कम से कम ब्रेड के अलावा ये अच्छा है। लेकिन इतना मिलियनर व्यक्ति होके एक गर्म रोटी जो उसको जरूरत है हेल्थ के लिए वो नहीं पा सकता है वो, बोलो आप, तो क्या वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या फ़ायदा क्या है वो। उसको मिक्स वेजिटेबल कैसे फ्रेश होता है पता नहीं, सब वो रेडीमेड बॉयल्ड प्री बॉयल्ड एंड प्री कूल्ड एंड प्री फ्रिज्ड रेफ्रिजरेटेड, वो डब्बा आता है उसके अंदर वो पानी स्ट्रेन करके उसको, क्या बताएं आपको, उसको ही गर्म करके खाते हैं, और फिर आप कहीं से भी स्वाब ले लो उसका, सब फंगल कल्चर मिलेगा आपको। ये टेक एनी वेयर एनी होल इन द बॉडी यू लाइक, यू टेक अ स्वैब एंड मेक इट कल्चर, आपको पूरा फंगस ही वराइटी ऑफ फंगस वराइटी ऑफ ब्यूटीफुल वराइटी ऑफ फंगस विल गेट अवेलेबल। तो मैं आपको कह रही इतना ही बता रहा हूँ कि ऐश्वर्य का मतलब क्या है, वॉट इज रियल वेल्थ इज इन सिंप्लिसिटी। और एक हमारे सन्यासी महाराज है, हमारे हेज होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज, वो इस्कॉन के बहुत बड़े आचार्य हैं, वेरी पावरफुल रिच स्पिरिचुअली पावरफुल सन्यासी, लेकिन वो ब्लैक अमेरिकन बॉडी है उनकी। वो मेरे घर पे आए थे और मेरी पत्नी ने उनको बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बना के खिलाया, तो उन्होंने एक उठाया और पूछा हु मेड दिस, तो मैंने कहा मेरी पत्नी ने बनाया। अच्छा वंडरफुल वंडरफुल, तो उसको खाया। दूसरा आइटम उठाया हु मेड दिस, आई सेड माय वाइफ मेड, तो भी खाया। फिर एक एक आइटम को पूछते रहे कि ये किसने बनाया ये किसने बनाया, तो हमारा उत्तर तो सेम था, आप 50 प्रश्न पूछो उसका उत्तर एक ही है। तो उन्होंने कहा यू मीन ऑल ऑफ दिस इज मेड बाय योर वाइफ, मतलब यस महाराज। तो कहते हैं यू आर मोर देन अ मिलियनियर ऑफ अमेरिका, मतलब महाराज आई एम वेरी सिंपल पर्सन, मिलियन इज अ बिग नंबर फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट इज मिलियन। और आपको कहते हैं कि आप मिलियनियर से बड़े धनवान हो, क्योंकि अमेरिका में जो मिलियनियर होता है ना उसी की बीवी कभी कभी दिल से खाना बन घर पे बनाती है, बाकी जितने भी लोग हैं वो दोनों पति पत्नी सब बच्चे काम करते हैं और घर में खाली वो रेडीमेड रेफ्रिजरेटेड एंड ओवन कुक्ड फूड ही होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। नोबडी नो वाइफ कुक्स फॉर हस्बैंड एनी डे इन लाइफ, कभी मूड आया तो साल में एक बार कुछ ऐसा हॉबी में बना लिया, मतलब जस्ट लाइक अ फन यू नो, रोज की जरूरत के अनुसार रोज गरम रोटी दाल चावल मिल रहा है, ऐसे किसी का भाग्य नहीं है। और बहुत धनवान लोग हैं वो, उनके पास होंडा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन भोजन जो है ना वो बासी खाते हैं, जो हमारे घर गांव का भिखारी भी नहीं खाता है, वो लोग खाते हैं बासी खाना। और हमारे भारतीय ब्राह्मण लोग हैं ना, वो कुछ लोग वहां बस गए। अभी सुनो कहानी, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए रियलिटी क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है, वहां पर लोग जाके क्या करते हैं। तो वो मैं खुद गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हूँ, रूप सनातन गोस्वामी और ये सब जगन्नाथ मिश्रा इनकी कास्ट में हैं। तो हमारे कास्ट के लोग उधर मुझे मिले, तो एक दिन उनकी पत्नी छुट्टी पर इंडिया चली गई, उसने क्या किया होगा, 28 सब्जियाँ प्लास्टिक के बोल में बनाई और सब फ्रिज में रखी, 28 प्रकार की सब्जियाँ, कुछ 4-5 प्रकार की दाल 28 बोल में डालकर रखी, और रोटियां बनाई कुछ 50-60 जो भी है 100 बनाई होंगी, वो पैकेट बना के फ्रिज में रखे। पति का काम क्या है, एक सब्जी उठाने का वहां से हवन में डालने का, एक दाल उठाने का हवन में डालने का, और रोटी निकाल के हवन में रखना और खाना उसको। इसको ऐश्वर्य नहीं बोलते, दिस नॉट ऐश्वर्य। तो सच्चा ऐश्वर्य क्या है वो पता होना चाहिए हमको। और अमेरिका में अभी कहावत आ गई ऐसे, दे ऑल्सो नो कि ऐश्वर्य का मतलब है जो पत्नी आपके लिए भोजन बनाती है तो एक ऐश्वर्य का एक अंग है, वो लाइफ ऑफ ऐश्वर्य। अगर आपका घर आपके काम करने की जगह से चलने के अंतर पे है वो दूसरा ऐश्वर्य। रियल गुड फॉर्चून इज दैट वर्किंग प्लेस इज क्लोज टू योर हाउस। हमारा कैसा है, हम सबसे लास्ट में घर में तैयार हो गए ना, लास्ट में तिलक लगाते हैं ना, वो चंदन का होता है, वो गिल्ला होता है, हम घर से तिलक लगा के निकलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते तभी तक तिलक गिला ही रहता है, कुछ समझ में आया आपको, इतना पास में है हमारा अस्पताल कि घर से निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं प्रार्थना में अटेंड करते तब तक तिलक सूखता नहीं हमारा, इतने हम लोग लकी हैं। सो घर में माँ के और पत्नी के हाथ का गरम गरम खाना खाना और रोज खाना, वो बड़े बड़े भाग्य की और बड़े ऐश्वर्य की बात है, जो अमेरिका में करोड़ों पतियों को भी प्राप्त नहीं है। वो गाड़ियों में घूमते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन भोजन के लिए वो भाग्य नहीं है। तो ये सब बेसिक चीजें हमको जागरूक करना है। वेल्थ वेल्थ क्या है, अभी दोनों काम करते हैं, दोनों के पास दो दो गाड़ियां हैं, 4-4 मोबाइल है, 5-5 टीवी है, और सब कुछ डबल डबल मल्टी कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया है उनको देखकर, सब मॉल में खरीदना है रेडीमेड, सब मॉल में रेडीमेड खाना है, फ्रेश खाने की आदत नहीं है। तो ये मूल जो है ना, मूल उसको आप सुधारो पहले, तब आपका हेल्थ भी सुधरेगा, आपका दिमाग भी सुधरेगा, सत्वगुण में आएगा, सत्वगुणी विचार आएंगे उसके अंदर, और भूमि के प्रति, देश के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम जागेगा। अगर भोजन में ही तमोगुण है तो फिर दिमाग में सत्वगुण कहाँ से आएगा? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और तमोगुणी अन्न खाएंगे तो तमोगुणी मन बनेगा, और तमोगुणी मन में क्या अच्छे विचार करेंगे आप? कितना भी आप संत लोग, संत भावना के होंगे भी, तमोगुणी अन्न खा के तमोगुण ही पैदा होगा। फिर कैसे भगवान के विषय में आध्यात्मिकता, उसका रहस्य और उसकी बातें समझ में आएंगी आपको? सूक्ष्म रूप की बातें कैसे समझ में आएंगी? वो गुण कैसे होते हैं और त्रिविध ताप क्या होता है और ये वातावरण में कौन सा वाइब्रेशन है, ये सब कैसे सेंसिटिवली समझेगा आपको? अगर हमारे इंद्रिय अगर शार्प नहीं है अच्छे भोजन से, अच्छे वातावरण से और अच्छे संस्कृति से, तो वो अच्छी अच्छी चेतनाएं कैसे साक्षात्कार पैदा होगा? जो आपने डाला है वही पैदा होगा ना। इसलिए विचार कीजिए आप, यात्रा जो है ना ये केवल भारत में होती है, कोई अमेरिका के तीर्थ यात्रा नहीं होती है। प्लीज थिंक अबाउट इट, तीर्थ यात्रा कहाँ होती है और लोग तीर्थ यात्रा करने जाते किधर है? केवल भारतवर्ष में जाते हैं और कहीं पर तीर्थ यात्रा नहीं होती है। यही एक तीर्थ यात्रा के लायक भूमि है जहाँ भगवान खुद आए हैं, अनंत बार आए हैं, अनंत समय पर रुके हुए हैं, अनंत युगों में अनंत बार, संभवामी युगे युगे, हर युग में अलग अलग अद्भुत अवतार लेकर आते हैं और लीला करते रहते हैं, और कहीं नहीं जाते वो। और हम इस देश के वासी हैं, और कोई एक पूरा देश में एक ही नदी है, इंग्लैंड में एक ही नदी है थेम्स, भारत में इतनी नदियां हैं कि हमको किसी नदी का वैल्यू नहीं है। यहाँ देखो इतना देखूँ कि उतना देखूँ, सब जगह नदी ही नदी है। यहाँ से मुंबई से केरला जाओ ना, जगह रहोगे अगर ट्रेन में आपके बिना, हर 10 मिनट में एक विशाल नदी आएगी, उसके नाम भी किधर भूल गए सब लोग, भी समुद्र की तरह नदियाँ हैं। तो भारत लोगों को क्या है, वैल्यू नहीं नदी की। उधर एक थेम्स की नदी है, उसका तो तल है ना, तल को दिखाई पड़ता है बाहर खड़े रहेंगे तो, आप कोई प्लास्टिक टुकड़ा डालते नहीं, उधर एक तल भी दिखाई पड़ता है, उधर तिल में कौन मछली घूम रही है दिखाई पड़ती है आपको। और भारत में गंगा जैसी नदी है जो गौलोक से आई है भगवान के चरणों से, उसकी क्या स्थिति है? क्यों स्थिति ऐसी है? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं है, हम खाली प्रवचन करते हैं और पेपर में लिखते हैं और भाषण देते हैं और गंगा जी का सफाई होनी चाहिए, लेकिन गंगा जी की विषय आस्था है क्या हमारे मन में? अगर आस्था होती तो गंगा जी की ऐसी अवस्था नहीं होती, यमुना जी की ऐसी अवस्था नहीं होती, क्योंकि वो जो भौतिकता वहाँ की है वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो हम लोग ठोस में यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। मेंटेलिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, इसलिए हमारी जो आध्यात्मिक धन दौलत है वो हम खो रहे हैं। तो यात्रा का ये भी पर्पस है कि हम अपनी देश की महानता और संस्कृति को पहचाने और अपनाएं और जिंदगी में उतारें उसको, क्योंकि हम लोग नहीं उतारेंगे, हमारे बच्चे नहीं उतारेंगे, फिर वो धरोहर आगे कैसे बढ़ेगी? हम तक समाप्त हो जाएगी, डेड एंड हो जाएगा वो। आप जाके अमेरिका में बस गए, वहीं पर बच्चों को पैदा किया, बच्चों को मालूम क्या है गणपति क्या है और शंकर क्या है और नवरात्रि क्या है और गणेश उत्सव क्या है? वो पूछेंगे, मम्मी व्हाट इज दिस एलिफेंट गॉड, व्हाट इज दिस मंकी गॉड, क्योंकि उनको वही बताते हैं वहां पर कि इंडिया में एक मंकी गॉड है। बट वो मंकी गॉड का महिमा किसको मालूम है? क्या उसकी पोजीशन है, क्या मालूम है? वो जो गणेश जी है, वो एलिफेंट गॉड जो है, उनका महिमा किसको पता है? हमको किसी का कुछ पता नहीं है, और वी आर ओके, वी आर वेरी प्राउड, आवर चिल्ड्रन आर अमेरिकन रिटर्न, दे आर आस्किंग हु इज मंकी गॉड, हु इज एलिफेंट गॉड। ये इतने शेम की और इतनी घृणास्पद बात है, लेकिन उस पर हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग वी आर अमेरिका रिटर्न्ड, वी हैव सोल्ड आवर कल्चर होल हार्टेडली एंड वी हैव गॉट अमेरिकन डॉलर विद अस, इसी का गर्व करते हैं हम लोग। तो ये विचार करने की बात है। और समझो हम लोग कहते हैं कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, सपोज वी से कि वी आर इंटेलेक्चुअल्स एंड वी यूज आवर ब्रेन टू अर्न मनी एंड लिव आवर लाइवलीहुड, वी आर नॉट फिजिकल श्रमजीवी नहीं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं। तो बुद्धिजीवी केवल उपजीविका अर्न करने के लिए नहीं होती है, बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धि से आगे के काम भी करते हैं, खाली भोजन का काम नहीं करते हैं। बुद्धि खाली भोजन करने के लिए नहीं दी आपको, बुद्धि और अन्य उच्च उच्च उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए दी है, जिस बुद्धि से हम भगवान को पहचान सकते हैं, उनके साक्षात्कार कर सकते हैं, उसने की उसके लिए बुद्धि है, और वो बुद्धि अगर आपके पास है और आप बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, तो आप पर अगर विचार नहीं करेंगे तो श्रमजीवी कैसे विचार करेंगे इसका? हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल हु आर लेबर्स टू थिंक वेरी हाईली अबाउट लाइफ एंड अबाउट सोल एंड अबाउट गॉड एंड अबाउट कल्चर? ये सब तो उनके लिए तो हथेली पे पेट है उनका, लेकिन हमारा हथेली पे पेट नहीं है। हम लोग स्वस्थ हैं वैसे, वी आर सेटल्ड, वी डोंट हैव एंग्जाइटी ऑफ कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ से यात्रा की फीस भरेंगे, ऐसा टेंशन नहीं हमको। अगर भगवान ने हमको सौभाग्य से ऐसी स्थिति दी है, और कुछ लोगों के आगे बनेगी, क्योंकि आगे डॉक्टर बनोगे तो आप हैंड टू माउथ नहीं रहोगे, तो आप लोगों का, हम लोगों का एक कर्तव्य है कि संस्कृति को जगाएं और लोगों को प्रेरणा दें कि क्यों हैं हम भारतीय, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, और क्या हमको पढ़ना है, यहाँ पर क्या ऐश्वर्य संपन्न ग्रंथ रखे हुए हैं, वो हमारी जो धरोहर है, हमारा जो दौलत है, उसको कभी हम हाथ लगाएंगे, कभी आत्मसात करेंगे उसको, कभी जीवन में उतारेंगे? ये सोचने का समय है ये, नहीं तो हमारी संस्कृति गई निश्चित रूप से, हमारे साथ ही बर्बाद हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, हम लोग अपने हाथ से ही ख़त्म करेंगे उसको। और बड़े गर्व से फिर हम लोग और किसी धर्म का, किसी देश का संस्कृति को भारत में लाएंगे, बड़े गर्व से लाएंगे। तो यशोदा देवी की भी, अरे उनके बालक भगवान थे, अगर षष्ठी पूजन नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता था, तो स्वयं भगवान है वो, षष्ठी देवी की भी जन्मदाता वही है, उनका ही उगम उनसे होता है, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ने षष्ठी पूजन किया, और वो छठी क्रा में किया, इसलिए उसका नाम पड़ा षष्ठी क्रा। और एक बताता हूं, यशोदा माई और कृष्ण भगवान, सॉरी कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों भगवान हैं, और माता पिता राजा हैं, नंद महाराज, यशोदा रानी, कोई किसी की कमी नहीं है, घर में हजारों गोपियां, हजारों सेवक सेवा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम को गाय चराने को भेजते हैं वो। अगर गाय को चराना ही है तो नौकर भी चरा सकते हैं, लेकिन नंद महाराज ने विचार पूर्वक कृष्ण बलराम को पहले छोटे बछड़ों का, बच्चियों का जो जिम्मेदारी दिया कुछ समय के लिए, और समय आने पर बड़े गायों का जिम्मेदारी भी दिया। और कृष्ण का पूरा जीवन जो है ना, वो गोपाल के रूप में मशहूर है, मोस्ट यू नो व्हाट, गोपाल, गौ चराने वाला, मुरली बजाने वाला, माखन खाने वाला। तो आज भी ये कल्चर है, अगर ब्रजवासी ये संज्ञा यानी कि दिस टाइटल अगर किसी को जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ जन्मा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत सारे अमेरिका, इंग्लैंड में बसे हुए हैं, तो वो ठाकुर जी की सेवा के परिवार से है, वो लोग ठाकुर जी की सेवा उनके परिवार में है, आती है टर्न बाय टर्न, तो वहाँ से आ नहीं सकते, वो पैसे भेजते हैं और किसी से करवा लेते हैं। तो आखिर में वो भी 50 साल की उम्र में आते हैं यहाँ पर और गौ चराते हैं, क्योंकि गौ चराए बिना उनको ब्रजवासी का टाइटल एक्सेप्ट नहीं होता है उनके लिए। तो कल मैं जब आ रहा था उधर राधा माधव से चंडीगढ़ आश्रम में, तो एक जवान लड़का जो है वो दो गायों को लेकर चल रहा था, मैंने जाकर उसको धन्यवाद दिया कि आप युवा अवस्था में हो, बड़े गर्व से कुत्ता चराने के बदले में गाय चरा रहे हो, कितनी बड़ी बात है ये। आजकल के लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे, हाँ, जो धनवान लोग हैं वो कुत्ता चराने में गौरव करते हैं अपने आप का, लेकिन हमारा कल्चर गाय चराने का है, हमें गाय चराए तो मैं बोलूँगा कि कोई डॉक्टर एमडी है, गाय चरा लो जरा, तो कितना संकोच करेगा वो, लेकिन कुत्ता दे वो हाथ में उसके, वो रे चाव से घूमेगा बीच पर। हाँ, यस और नो यू टेल मी, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ साबित करो मुझे आप। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे विद्या विभूषित, उच्च विद्या विभूषित लोगों को कुत्ता चराने में बहुत ज़्यादा गर्व है, उसकी टट्टी भी प्लास्टिक में डाल के ऐसे उठाकर जेब में डालते हैं। हाँ, लेकिन गाय के गोबर का ई करते हैं, जो सबसे पवित्र है, जो आपके घर के कर्म को सबको पवित्र कर सकता है, वो उसको आप लांछन समझते हो, कितनी बड़ी बुदबू आती है कहते हो, उसी वही प्लास्टिक हाथ डाल के टट्टी उठाकर डस्टबिन में डालते हो। तो मैंने जाके धन्यवाद दिया उसको, लाभ महान हो आप इतनी युवावस्था में फिर भी प्रेम से गाय चरा रहे हो। मेरी बेटी भी बचपन में बहुत जिद करती थी, पापा गाय रखो हमारे घर पे, मैं बोला सोसाइटी में कहाँ गाय लगाऊं। लेकिन वो बहुत उसकी इच्छा थी, और मुझे बड़ा गर्व था इस बात का कि अरे बेटी के मन में इच्छा तो हो रही है कि गाय चाहिए, तो पपी मांगते हैं आजकल, है ना। तो यशोदा माई, नंद महाराज ने भी इतना धन होने पर भी अपने इतने स्पेशल चिल्ड्रन जो दोनों को गाय चराने को लगाया नंगे पैर। ये बता रहे हो कि संस्कृति बहुत जरूरी है, भगवान के लिए भी जरूरी है, भगवान भी उसको अपनाते हैं, और बताते हैं कि आप भी अपनाओ, आपका भी कल्याण उसी में है। गाय के आसपास रहने में जीवन का धन्य कल्याण होता है। केवल जस्ट बीइंग अराउंड काउज लाइफ इज सो हैप्पी एंड पीसफुल, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, फ्री फ्रॉम डिसीज। गाय का दूध पियो, पंचगव्य को सेवन करो, गोमूत्र का सेवन करो, उससे बढ़िया कोई। अभी आप अमेरिका के लोगों को बताएंगे तो हंसेंगे आपको वो, और आप भी बताते हुए हंसेंगे उनको, लेकिन हमारे देश की धरोहर है। एनीवे, तो यहाँ पर जन्म उत्सव जो भगवान का हुआ था ना, वो एक शास्त्र में लिखा है कि 6 महीने तक चला, और 6 महीने तक किसी को पता नहीं चला कि दिन ढल रहा है कि दिन उग रहा है। इतना मशगूल आनंद में थे, भगवान का जन्मोत्सव इतना धूमधाम से मनाया गया। 6 महीने के बाद जब उत्सव समाप्त होने को आया ना, तो सब लोग ने ब्रह्मा जी को जी भर के गाली दी, ये कोई ब्रह्मा है? लायक छत्ता लगता है बूढ़ा हो गया है ब्रह्मा। वो क्या एक शब्द है हिंदी में यहाँ पर, मतलब सटिया गया है वो। मतलब सठिया, 60 उम्र के होने के बाद वो बोलते ना, वो सठिया गया है, मतलब बुद्धि भी उसकी क्षीण हो जाती है, मेमोरी भी क्षीण हो जाती है, विचारधारा भी कमजोर हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, बहुत सारा। तो सठिया गया है बोलते ब्रह्मा। उसको समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा उत्सव चल रहा है और इतनी जल्दी समाप्त कर रहे हैं। आज के दिन कम से कम सूर्यास्त तो देर से होना चाहिए था ना, इतनी भी ब्रह्मा को अकल नहीं है। ऐसे ब्रह्मा को गाली देते देते उनका उत्सव समाप्त हो गया। 6 महीने एंजॉय करने के बाद की बात है ना। मैंने कल बताया था ना, नित्यानंद प्रभु ने जब बच्चों के साथ कीर्तन शुरू किया ना, 90 दिन 24/7 कीर्तन किया, और बच्चों को पता नहीं चला कि दिन चल रहा है कि रात चल रही है, कि डिनर का टाइम हो गया कि लंच का टाइम हो गया। ये भाव विभोरता है, शरीर के परे जाने की अवस्था है। फिर जब भी उनका फर्स्ट बर्थडे कृष्ण का आया ना, तो ब्रज में यहाँ प्रचार ऐसी प्रथा है कि षष्ठी पूजन किए बिना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। तो उनको याद आ रही, लास्ट साल में तो षष्ठी पूजन किया ही नहीं, तो वो अगले अष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आते हैं ना, वो जन्माष्टमी के पहले वाली षष्ठी को षष्ठी पूजन किया उनका, और फिर वो फ्री हो गए कि अभी सालगिरह मना सकते हैं। तो वो षष्ठी पूजा यहाँ पर हुई छटिकरा, एग्जैक्टली यहाँ पर आगे जाएंगे मेन रोड पे तो वो सर्कल है ना, वो छटिकरा गांव है पूरा, वो भगवान के गौचारण का भी प्रमुख स्थल है। षष्ठी पूजन भी वहाँ पर हुआ था, और वहाँ पर जब भी कंस के आतंक से परेशान होकर उपनंद महाराज की सलाह से नंद महाराज जब गोकुल से निकले नंदगांव जाने के लिए, तो छटिकरा में उन्होंने अपना तंबू ठोका था कुछ समय के लिए, और यहाँ पर निवास भी किया था, भगवान ने राज भी रचाया यहाँ पर। तो एक और अनोखी बात बताता हूँ आपको, वृषभानु महाराज राधा रानी के पिताजी और कृष्ण के पिताजी नंद महाराज बहुत गहरे दोस्त है दोनों के, बहुत गहरे दोस्त, दोनों राजा हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। दोनों का विवाह एक दूसरे ने अरेंज किया था, वृषभानु का कीर्तिदास से विवाह नंद महाराज ने प्रपोज किया था, और नंद का यशोदा के साथ विवाह जो था वो वृषभानु महाराज ने प्रपोज किया था। अरे फ्रेंडशिप हो तो ऐसी है ना, एकदम पते की बात पर फ्रेंडशिप। तो दोनों ने एक साथ निर्णय किया कि अपन दोनों चलेंगे और वापस नंदगांव बरसाना बसेंगे, क्योंकि पहले नंदगांव बरसाना में ही थे, लेकिन पुत्र संतान प्राप्ति नहीं हुई थी उनको, इसलिए वो यमुना जी का सान्निध्य बहुत ऑस्पिशियस है, शुभ है, पवित्र है, यमुना किनारे में बसेंगे तो फिर वो संतान प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए वहां से शिफ्ट हो गए थे। फिर वो प्राप्ति हुई ना, राधा रानी की प्राप्ति हुई, कृष्ण बलराम की प्राप्ति हुई, और राक्षसों का आतंक चालू हो गया। तो फिर एक दिन मीटिंग किया कि अभी यहाँ नहीं रहना, अभी वो बहुत असुरक्षित जगह हो गई है दोनों बच्चे के लिए, दिन रात कोई मारने को आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो शिफ्ट होने के लिए उन्होंने सोचा और सब कुछ शिफ्ट बैलगाड़ी में डाल दिया सामान, और यहाँ तक आ गए वो गोकुल से, तो यहाँ पर आकर बसे। लेकिन सिग्निफिकेंट बात यह है कि राधा कुंड यहाँ से 28 किलोमीटर है, जस्ट थिंक। हाँ, सब लोग अगर जग रहे हो तो सोच सकते हो, नहीं जग रहे सोच कर सकते हो, तो अगर जग रहे हो तो सोचो कि यहाँ से राधा कुंड जो है वो 28 किलोमीटर है, और राधा कुंड के पास एक गांव है 1 किलोमीटर के दूर पे, उसका नाम है बसोती, यानी वसती नाम है उसका, लेकिन आज उसको बसोती बोलते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और वो वृषभानु महाराज का केंद्र बिंदु था तंबू का, सेंट्रल पॉइंट ऑफ हिज टेंट, और छटिकरा में नंद महाराज के तंबू का सेंट्रल पॉइंट था। तो कितना दूर है तंबू उनके, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि उनके दोनों तंबू एकदम टचिंग थे एक दूसरे को, उसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़े, इतने विशाल तंबू थे उनको, उनका सेंटर बसोती में, यहाँ चटकरा में, फिर भी वो टचिंग दे, जस्ट टचिंग इच अदर, ऐसा था ना, ऐश्वर्य होगा। देखो सब ध्यान गऊ के ऊपर था, सब ऐश्वर्य गऊ के ऊपर था, जीवन गऊ के ऊपर निर्भरित था उनका। और ऐसा नहीं कि गरीब थे वो, बहुत धनवान थे, अरे टनों में मक्खन फेंकते थे वो उत्सव में एक दूसरे के ऊपर। हम लोग तो अगर फेंकेंगे तो पूरा इकट्ठा करके रखेंगे, डब्बा में कैच करेंगे उसको, पर मक्खन फेंक रहे तो कैच करके हफ्ते भर चलेगा वो तो ऐसे ही फेंक रहे गोले, इतने गोले फेंके, इतने गोले फेंके जन्माष्टमी के ऊपर कृष्ण के उत्सव में कि मोरियां ब्लॉक हो गई उनकी, और उसके ऊपर दूध दही फेंका तो सब इतना तक भर गया, क्योंकि मोरी में सब मक्खन के गोले, वो ब्लॉक करके रखा उन्होंने वहां पर। ऊपर से जितना फेंका ना, तो कहते हैं कि वैसे एक क्षीर सागर पैदा हो गया उधर। कल गए थे ना हम लोग यात्रा में, कि कल गए थे ना, आप नहीं गए थे, हम लोग गए थे उधर भोजन स्थली में, उधर दूध लुढ़कने से क्षीर सागर प्रकट हो गया है। वैसे नंद भवन में कृष्ण जन्म के उत्सव के ऊपर क्षीर सागर निर्माण हो गया, और नंद बाबा को पेट में दोरी बांधकर उन्होंने नचाया, वो कहते समुद्र मंथन हैरो है बाबा, नंद बाबा मेरु मंदार पर्वत बन रो है, और हम लोग उनको नचाएंगे, वो तो बूढ़े है तो का हुआ, हम नचाएंगे उनको, वैसे करके नचाया उसके अंदर। इतना ऐश्वर्य, मतलब गरीबी का लक्षण है क्या ये, जिनके घर में फेंका जा रहा है ऐसे वस्तु, तो धनी लोग ही हो सकते ना ऐसे फेंकने वाले। इतना ऐश्वर्य था केवल गऊ के ऊपर जीवन केंद्रित होने पर भी। तो ये छठीग्रह है, और यहाँ पर ये जो हमारी जहाँ बैठे ना, बहुत ही पवित्र स्थल है ये, अति पवित्र स्थल, आप तो महसूस भी करते होंगे यहाँ बैठ के, अभी अनुभव भी करते होंगे, इतना सुंदर सघन वृक्षावली कहाँ मिलेगी आपको, इतनी छाया कहाँ हो सकती है बम्बई में, इतनी शांति, भगवान का लीला स्थल, सुंदर गोविंद कुंड आपके बाजू में विराजमान है, कैसे हो सकता है ये सब, केवल भगवान की भूमि में, पवित्र स्थल में हो सकता है। और ऐसे प्रचुर मात्रा में हमारे भारत में दिव्य स्थल है, खाली इधर नहीं है, ये तो है सर्वोच्च है, लेकिन बाकी अयोध्या में भी है, मायापुर में भी है, जगन्नाथपुरी में भी है, द्वारका में, सब जगह पर इतने पवित्र स्थल भरे हुए हैं। अरे एक जीवन पुराने पड़ेगा आपको, अगर आपने तय किया कि सब मुझे देखना है इस जीवन में, तो भी पूरा नहीं होगा, इतना खजाना भरा हुआ है यहाँ पर, फिर भी हमारे अंदर उसकी रुचि नहीं है देखने के लिए। तो इस जगह पर क्या हुआ, छठीकरा के इस स्थान पर भगवान गौचारण करने को आते हैं। तो रामायण में क्या हुआ था, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, कि जब ही प्रभु रामचंद्र को इंद्रजीत की शक्ति लगी ना, है ना, उसकी लगी ना, प्रभु रामचंद्र बेहोश हो गए ना, लक्ष्मण को भी लगी, राम जी को भी लगी, लक्ष्मण जी भी बेहोश हो गए थे तो संजीवनी बूटी लाया था, वो एक अलग प्रसंग है। प्रभु रामचंद्र भी युद्ध में जब आए तो उनको भी शक्ति लगी, वो भी रामपाश लगा ना उनको, नागपाश फेंका ना उनके ऊपर, तो नागपाश से भगवान रामचंद्र रणभूमि पर बेहोश हो गए। और उसका भी एक समय था कि इसके पहले अगर राम नागपाश को निकाला नहीं गए ना तो मृत्यु हो जाएगी। अभी आप सोचिए, आपका सेनापति बेहोश है नागपाश के अंदर, मतलब नागों के पाश में असहाय होकर बेहोश हो गया वो। अभी सब चिंतित हैं, क्या करें क्या करें। तभी किसी ने कहा कि अभी गरुड़ जी को पुकारो, गरुड़ जी जो है ना, वो विनीता के पुत्र हैं, कद्रु देवी के सिस्टर, विनीता देवी के वो पुत्र है वैनतेय, और वो नाग डरते हैं उससे सब लोग। तो गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी के आते ही सब सांप भाग गए, सब पास पास छोड़ के वो चले गए, गरुड़ जी को कुछ करना नहीं पड़ा, केवल प्रेजेंस। महान व्यक्तियों का उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑल टाइम महान व्यक्ति लोग कुछ करना पड़ेगा ऐसा जरूरत नहीं होता है, महान व्यक्तियों को होना जरूरी है, ही से शुड बी प्रेजेंट, उनका उपस्थिति से बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। तो गरुड़ के आगमन से ही सारे नाग भाग जाते हैं और प्रभु रामचंद्र होश में आते हैं। तब गरुड़ को लगता है, अरे ये प्रभु है क्या, ये प्रभु है तो मुझ पर निर्भर कैसे, मेरे आने से ये मुक्त हो गए पास से, तो संभ्रम हो गया उसको मन में, एक प्रकार से अज्ञान का एक भ्रम हो गया मन में कि इज ही द लॉर्ड और इज ऑर्डिनरी पर्सन। अभी भगवान ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि भगवान को अपने वाहन की बहुत याद आ रही थी कि मेरा प्रिय वाहन, मेरा भक्त गरुड़ जी, इस लीला में कोई संबंध ही नहीं है ब्रज में, कोई ऐश्वर्य का कुछ काम नहीं यहाँ पर। और गरुड़ का होना एक ऐश्वर्य का प्रतीक है ना, वो उनका वाहन है, वो स्वयं विष्णु तत्व है, वो वाहन है उनके। तो लेकिन ब्रजलीला के अंदर गरुड़ का कोई काम नहीं है, तो गरुड़ छुट्टी पर है। लेकिन भगवान को अपने प्रिय भक्तों की याद नहीं जाती कभी, तो उनको लगा कैसे भी करके प्रभु ने सोचा कि गरुड़ को बुलाना चाहिए। तो राम लीला में भी गरुड़ का कहाँ काम है, कुछ नहीं काम है। वनवास में क्या गरुड़ को लेके घूमेंगे, वो इम्पाला लेके घूमेंगे मर्सिडीज। तो उन्होंने अपने गरुड़ को सेवा देने का एक आयोजना बनाया, योजना बनाई। लेकिन उसके मन में संभ्रम पैदा हो गया। तो प्रभु ने अगले अवतार में गरुड़ को यहाँ पर आह्वान किया और आह्वान करके उस पर सवार हो गए प्रभु कृष्ण भगवान, उनको ये बताने के लिए कि ये मत समझना कि मैंने तुमको सांप पास के मुक्त करने के लिए बुलाया तो मैं अधीन हो गया तुम्हारे, मैं वही हूँ तुम्हारा नाथ। इसलिए गरुड़ को भगवान ने ये भाग्य दिया समझने का कि मैं वही हूँ तुम्हारा नाथ, वैकुंठ नाथ। वो एक लीला हो गई यहाँ पर। दूसरी लीला ये हो गई कि इसी जगह पर भगवान गौचारण कर रहे थे, सब लोग सुन रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु यहाँ पर श्रीदामा के साथ सबके साथ में खेल रहे थे, अचानक प्रभु ने कहा श्रीदामा गरुड़ बन जाओ। तो श्रीदामा के पास ऐसे खुद की शक्ति नहीं है कोई मंत्र तंत्र की, लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति इतनी जोरदार है, भगवान ने कहा और तुरंत वो गरुड़ बन गए, तुरंत गरुड़ ही हो गए पूरे कंप्लीट। और भगवान तुरंत उसके ऊपर सवार हो गए, जो सवार हो गए ना तो 12 भुजा वाला ऐश्वर्य संपन्न रूप दिखाया उन्होंने। 12 भुजा वाला स्वरूप भगवान का तो ब्रह्मालोक में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, बोलो आप, केवल यहां पर है। 12 भुजा वाला स्वरूप जो है भगवान ने यहां प्रकट किया, यानी एक प्रकार से ऐश्वर्य प्रकट किया उन्होंने, ब्रज भूमि के माधुर्य के भाव के इलाके में ऐश्वर्य भाव प्रकट किया और द्वारका भाव भी प्रकट किया। क्योंकि जैसे उन्होंने 12 भुजा वाला रूप यहाँ प्रकट किया और वो गरुड़ पर सवार हो गए, बालक ही थे वो, आप जानते हैं ना जब बालक सोता है ना तो वो ऐसे पैर करके सोता है, यू नो दैट ना, हमारे मेडिकल में वो बहुत जानकारी है उसकी, ऐसे पैर सोता है बालक, उसका फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे होता है कि वो पूरा ऐसा फ्लैट हो सकता है दोनों पैर उसके। तो यहाँ पर ऐसे ही दोनों पैर ऐसे पैरेलल में 180 डिग्रीज में रखकर बैठे हुए हैं वो। हम लोग ऐसे बैठेंगे ना, हम लोग ऐसे बैठेंगे, लेकिन भगवान के पैर ऐसे हैं, पूरे ऐसे ऐसे मुड़े हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि बालक भाव में ना, वो बाल भाव में है। जैसे ही ऐश्वर्य प्रकट होगा यहाँ पर द्वारका का, तो रुक्मिणी और सत्यभामा प्रकट हो गई, वो जो राधा रानी उनके साथ में थी वो लक्ष्मी स्वरूप बन गई। सुन रहे हैं आप लोग, राधा रानी जो राधा रानी गोपी भाव गोपी में रूप में है ना यहाँ पर, वो भी ऐश्वर्य के प्रदर्शन में लक्ष्मी बन गई। इसलिए यहाँ पर जो राधा रानी लक्ष्मी जो है वो राधा रानी है, और वो गरुड़ जी आपको दिख रहे हैं लंबे कपड़े में ढके हुए, वो उनके सर पे शीश में देखो यहाँ पर एक ऐसा एक पथरीला भाग है, वो गरुड़ जी का मुख है, उसके लिए एक होल बनाकर दिया हुआ है, और नीचे गरुड़ के पैर हैं और पैर के पास सत्यभामा और रुक्मिणी विराजमान है। तो भगवान 12 भुज गए, 12 ही भुजें ढकी हुई हैं यहाँ पर पूरी, 12 प्रकार के आयुध उनके हाथ में पकड़े हुए हैं। ये सुंदर दर्शन जो बहुत प्राचीन है, इस विग्रह को कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ ने बनाया था, जब उन्होंने ब्रज को संवारा ना तो ये भी मूर्ति उन्होंने बनाई थी। जब आगे लुप्त हो गई तो कुछ साल के बाद में इस कुंड में है ऐसा स्वप्न पुजारी को आया और इस कुंड से उसको प्रकट करके पुनर्स्थापित किया गया। ये ब्रज का एक बहुत प्राचीन विग्रह है, और ब्रज में ऐसे बहुत मंदिर है जहाँ पर लाखों लोग बाहर से आते हैं, लेकिन ब्रज के लोकल लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। वो गरुड़ गोविंद को अपना पूजनीय मानते हैं, भले उनके मंदिर में बाहर के लोग आके लाखों में दर्शन लेते हैं, उनका मंदिर पर प्रख्यात है, लेकिन उनके खुद के लिए वो एकांत में यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। हमारा भी ऐसा भाग्य रहा है कि एक दिन हमने यहाँ पर आए और पुजारी से थोड़ा प्रेम से बातचीत हो गई, उन्होंने हमको तुरंत दर्शन कराया और कहा कि आप अभिषेक करना चाहोगे, मतलब मैं कर सकता हूँ आपकी। तो उन्होंने हमको 3:45 पे सुबह बुलाया, बहुत ठंड थी उस समय, और हमने गर्भगृह में जाकर पंचामृत का अभिषेक कराया भगवान, पहले सुगंधित अत्तर से भगवान के शरीर को मालिश किया, पूरे भगवान दिगंबर अवस्था में पूरा कपड़ा निकाल के कंप्लीट गरुड़ जी और स्वयं भगवान, पूरा उनको सुगंधित तेल से मालिश किया बहुत देर तक, उसके बाद में पंचामृत अभिषेक किया उनका, गरम गरम पानी से नहलाया उनको, वो सारा चरणामृत हमको उन्होंने दे दिया। लो तुमने जितना हमारे पेट में क्षमता थी वो सब पी लिया उसको फिर भी बचा, फिर जाके वृंदावन में बांटा। याद है ना जय प्रभु कहाँ है, पिया था ना आपने, याद है ना आपको? हाँ तो बहुत यहाँ पर कैसा है ना, छोटी छोटी चीजों पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है यहाँ। तो आप छठीग्रह में आए हो, गरुड़ गोविंद से प्रणाम करो। ऐसा भाग्य, मुझे टेंशन था कि आप लोग अभी, हम लोग तो वहाँ ही आनंद में गुम हो गए, घड़ी को देखा ही नहीं, अरे दर्शन तो बंद हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ आके पता किया तो दर्शन बंद ही नहीं होता है, सुबह खोलेंगे 4:30 बजे रात तक खुला रहेगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर आराम से दर्शन करके कथा सुन रहे हो, तो फिर कथा ही सुननी, दर्शन नहीं सुनना था, देखना था। ये सब कृपा है भगवान की, है ना। हम लोग अपने धाम में ना कुछ कुछ योजना बनाते हैं अपने अपने दिमाग से, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है, ये मैंने कई बार अनुभव किया है। इसलिए समझो, अभी डॉक्टर हमारे बोल रहे थे कि आपने लंबा लिस्ट रखा है आज देखने के लिए, लेकिन वो पूरा होगा कि नहीं होगा वो भगवान पर डिपेंड है। हम लोग अपना हर जगह का आस्वादन करते करते चलेंगे, और समझो कुछ मिस हो गया तो भी दुखी नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे। क्यों, कारण क्या उसका? अरे आपने प्लानिंग किया तो आपको तो करना चाहिए था ना, अभी 8 तीर्थ आप बोल सकते हैं ऐसे सब। मैं आपको एक कथा बताता हूँ। 1994 में ना हमारे मंदिर की यात्रा मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी एज ऑर्गेनाइज़र, हाँ, और हर दिन में एक प्लानिंग किया था कि ये होना चाहिए, इतना दर्शन होना चाहिए, लेकिन लोगों के ऊपर होता ना अभी आप धीरे धीरे, वो है ना वो गज गति से चलेंगे ना, गज गति पता है आपको, धीरे 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 यहाँ वहाँ देखते हुए, तो एक एक स्थान वहाँ पीछे के कैंसिल हो जाते हैं, डिलीट वो हम समझते हैं कि अभी देखो ये स्थान कैंसिल हो जाएगा, अभी ये भी वो देखते रहेंगे स्टॉल में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, लास्ट स्थान कैंसिल, सेकेंड लास्ट स्थान भी कैंसिल, थर्ड स्थान भी कैंसिल, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही हुआ, बहुत सारा बढ़िया प्लान बना कर रखा था ये सोच कर कि लोग चुस्त रहेंगे, तुरंत भागेंगे और कुछ देखेंगे नहीं, खाली स्थान तो स्थान क्विक रहेंगे, ऐसा हमारा एक भोली भाली आशा थी, लेकिन वो आशा यात्री लोग पूरी नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे ही बहुत दिन हो गया और हर दिन कुछ ना कुछ कैंसिल करना पड़ा, और लास्ट डे हम लोग पूरी यात्रा समाप्त करके वे लौट के आ रहे थे, तो महाराज जी मेरे ही बस में आके मेरे बाजू में बैठ गए और कहते हैं विश्वरूप जी कैसी हुई यात्रा। तो आई वॉज इन मैनेजमेंट मूड ना, तो मैंने कहा महाराज अगर सब यात्री लोग सहयोग करते ना तो सारे स्थान हम दर्शन करते, लेकिन लोग ना हिलते नहीं महाराज, क्या करें, तो चलते नहीं फास्ट, कितना भी हल्या हल्या थिर थिर करेंगे तो भी वो अपने गति में चलते हैं। तो महाराज ना एकदम, मुझे लगा मैं बहुत एकदम इम्पोर्टेंट फीडबैक दे रहा हूँ, वेरी इंटेलेक्चुअल वेरी फाइन फीडबैक आई एम गिविंग। महाराज बहुत गंभीर हो गए एकदम, लगे वो डांटेंगे मुझे, वो डांटा उन्होंने मुझे, मैंने कहा नेवर थिंक लाइक दिस, वृंदावन धाम ये भगवान का खुद का घर है, और तुम प्लानिंग करोगे कि भगवान के घर में अंतरंग में कौन सा जगह में घुसेंगे आप, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम खाली प्रपोज कर सकते हो भगवान ये कोने में घुसू क्या तो हाँ भाई घुस जा, तो फिर लोगों को लेकर घुसना है आपको, लेकिन वो आप सोचेंगे कि अरे क्यों नहीं घुसने दिया, हमने प्लान तो बनाया था, अर्जी दिया था, सैंक्शन क्यों नहीं किया भगवान ने। वो कहते हैं नम्रता से जाओ भगवान के धाम में, भगवान के धाम में भगवान को अपने घर के कौन से अंतरंग हिस्से आपको दिखाने हैं, अरे वो तय करते हैं वो, और कितना दिखाने हैं और कितना अंदर का रहस्य खोलना है आपके लिए, वो सब कुछ वो तय करते हैं, हम लोग नहीं करते। इसलिए बी ऑलवेज हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आपको इतना देखने को मिला, यही धन्यवाद करो। हम लोग कैसे रहते हैं, अच्छा खाना था लेकिन वो 4 स्वीट बोला था लेकिन 3 ही स्वीट थे उसके अंदर ऐसा होता कि नहीं, आप सुनते हैं किसी के मुंह से कि अरे मैं गया था पहली पंगत में ना, 4 स्वीट है, 4 सब्जी है, 4 प्रकार के राइस है, 4 प्रकार के पकौड़े हैं, और आप जाएंगे तीसरे पंगत में तो आपको 3-2, 3-2 नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे अरे वो नहीं मिला, अरे आपने 15 आइटम खाए वो आप सोचेंगे नहीं, वो 2 स्वीट नहीं मिला और 1 पकौड़ा नहीं मिला, वो केले का पकौड़ा खत्म हो गया था, ये सोचेंगे तो कहते निगेटिव मेंटेलिटी। लेकिन हमारा मंतव्य ऐसा ही होता है, क्या मिला इसके बदले में क्या नहीं मिला इसका ज़्यादा सोचते हम लोग, मिला तो मिला ना, नहीं मिला वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो नहीं मिला तो हमने उस दिन से कान को हाथ लगा लिया है कि ब्रज में वी ओनली प्रपोज, बाद में क्या डिस्पोज करना है वो उनके हाथ में, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जो मिला उसको बड़े आस्वादन के साथ में ग्रहण करते हैं, है ना। पूरा 32 बार पूरा चरवण करके उसका पूरा आस्वाद लेकर ग्रहण करते हैं उसको, भले एक ही आइटम मिले। दिस इज अ रियल अप्रोच टू ब्रज। तो ब्रज में आप जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ पहुँच गए आप, इसी का धन्यवाद करो आप कि हम पहुँच गए यहाँ पर, कुछ सुनने को मिला तो बहुत और धन्यवाद, सुनने को भी मिला, समझ में भी आया, कुछ लीला था उसकी। दिस इज वॉट वी हैव टू ऑलवेज बी इन मूड। तो प्रार्थना कीजिए कि सब जगह जाएंगे, लेकिन नहीं भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के घर में इतनी जगह तो देखी हमने अंदर घुसकर, इतनी अंतरंग लीला स्थली है ये, सामान्य लीला स्थली नहीं है ये, सब बहुत ही उत्कट प्रेम की लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे मैंने बताया गरुड़ गोविंद का दर्शन तो वैकुंठ में भी नहीं है, जो 12 भुजा वाला दर्शन पृथ्वी पर दिया हुआ है। वैकुंठ लोक में भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन भी नहीं है। सब देवता लोग भाग भाग के यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर जब अवतार लेते हैं ना तो जन्म भी लेते हैं, रेंगते भी हैं, तोतले बोल भी बोलते हैं, घुटवन चलते हैं, बहुत सारे सब यहाँ होता है। गौलोक में कुछ नहीं होता है उधर, वो सो जा वो लोरी वोरी गाते नहीं उधर, वो सब इधर ही गाई जाती है, क्योंकि वहाँ बाल स्वरूप है वहीं लोरी गाई जाएगी। जहाँ बड़ा बच्चा है 16 साल का, वहाँ क्यों लोरी गाएंगे, खुद सोएगा खुद उठेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।